आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक में जल स्रोतों के संरक्षण और प्रकृति को बचाने का आह्वान किया। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया। और प्रदेश में राशन वितरण को हाईटेक बनाने के लिए अब फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू होगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद अभियान के तहत तमिलनाडु के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। श्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में नया माहौल उभर रहा है और लोग राज्य में बदलाव की उम्मीद के साथ भाजपा तथा एनडीए की तरफ देख रहे हैं।
बीजेपी एनडीए को लोग बदलाव की उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ये आपकी मेहनत ही है या तमिलनाडु में जनता के बीच एक नया माहौल बन रहा है। किसानों का भला होना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक वो समय था जब डीएमके के केंद्र सरकार में रहने के बाद भी तमिलनाडु के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आता था, और एक आज का समय है एनडीए सरकार रेलवे, हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट के बड़े प्रोजेक्ट ला रही है।
रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 के समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए, जहां किसानों के लिए आधुनिक खेती और तकनीक पर चर्चा की गई। इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन दशहरा मैदान रायसेन में किया गया, जिसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकी, उन्नत बीज, सिंचाई और जैविक खेती की जानकारी देना रहा। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि खेती को समृद्ध बनाने के लिए कृषि तंत्र, ज्ञान और आधुनिक तकनीकों को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ एक मंत्री के रूप में नहीं बल्कि किसान के रूप में आए हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ मंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं किसान के रूप में आया हूँ, क्योंकि मैं भी खेती खुद देखता हूँ, सब प्रयोग करता हूँ। और मैं इतना विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे 17 डॉक्टरेट और डिलीट मिली हुई है। अगर प्रगति और विकास करनी है तो भूतकाल में हम कैसे हैं, इसका वर्तमान काल में इसलिए अध्ययन करना आवश्यक है कि उसके आधार पर हम भविष्य की नीति बना सकते हैं।
वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र के लिए बीज से बाजार तक कृषि रोडमैप तैयार किया गया है, जिसके तहत बीज ग्राम, कस्टम हायरिंग सेंटर, मशीन बैंक, कोल्ड स्टोरेज और एफपीओ को मजबूत किया जाएगा। इस महोत्सव में देश भर के किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिससे किसानों को आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के नए तरीकों से परिचित होने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्वर्गीय भगवत शरण माथुर की जयंती पर आयोजित विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है और मां नर्मदा के संरक्षण का संकल्प सामूहिक रूप से पूरा किया जा रहा है।
जल अभियान परिषद भी जलगंगा अभियान के माध्यम से, मध्य प्रदेश सरकार भी हमारे सभी जल स्रोतों की चिंता कर रही है। तमाम कुएं, बावड़ी, नदी, नाले, तालाब, हर स्थान पर हम 3 महीने काम करने वाले हैं। गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक और नर्मदा समग्र भी उसी में जुड़ा हुआ है।
मुख्यमंत्री श्री यादव ने पर्यावरण संरक्षण को हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बताते हुए सभी से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें नमन करते हुए उनके समानता और अधिकार के संदेश को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस अधिनियम को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत सम्मेलन, पदयात्राएं और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष बताते हुए कहा कि जबलपुर में आयोजित कृषि मंथन कार्यशाला में किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी और कृषि नवाचारों पर चर्चा की गई। उन्होंने किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था को और आधुनिक बनाने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू की जाएगी। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि ये व्यवस्था दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि मार्च 2026 में 1,24,00,000 से अधिक परिवारों को करीब 2,72,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है, जबकि शेष परिवारों को 15 अप्रैल तक राशन उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन दिया जा रहा है। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए OTP और नॉमिनी व्यवस्था भी लागू है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड और पोर्टेबिलिटी के माध्यम से लाभार्थियों को देश और प्रदेश में कहीं से भी राशन लेने की सुविधा प्रदान की है। प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। प्रदेश भर में 2,904 स्थानों पर जांच की गई, जिसमें 4,369 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और कई मामलों में FIR दर्ज की गई। सरकार ने बताया है कि राज्य की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और LPG, पेट्रोल, डीजल, PNG तथा CNG की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक ऊर्जा जैसे बायोगैस, सोलर और अन्य साधनों का भी उपयोग करें, ताकि ऊर्जा संसाधनों का संतुलित उपयोग हो सके। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर खत्म होते ही गर्मी ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि रतलाम में सबसे अधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। 16 अप्रैल से लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर मालवा निमाड़ क्षेत्र यानी इंदौर और उज्जैन संभाग सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में छात्रों और अभिभावकों की सुविधा के लिए शहर में पुस्तक मेले का आयोजन आगामी 15 से 17 अप्रैल तक किया जाएगा। जलगंगा संवर्धन मिशन 2026 के तहत आज आगरमालवा के शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाने पर जोर दिया गया। शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल में तेंदू पत्ता संग्रहण में नवाचार करते हुए अब प्रशिक्षित युवतियां संग्राहकों को गड्डी बांधने तथा चयन करने के तरीके सिखाएंगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज खंडवा में जिला स्तरीय आयोजन के तहत किशोर कुमार सभागृह में स्वच्छता कर्मियों और वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। शिवपुरी के जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आज दिव्यांगजनों के अभिभावकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सागर जिले के बंडा क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने वन विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य 90 उपार्जन केंद्रों पर जारी है। बैतूल में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन 16 अप्रैल को किया जाएगा। और राजगढ़ में राज्य मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने कल नवीन जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर 4 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। वहीं भोपाल के बड़ा तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज भी कार्रवाई की गई। टीम सेवनिया और गौरा गांव पहुंची, जहां तालाब की सीमा में बने बाउंड्री वॉल सहित कई पक्के निर्माणों को JCB से ध्वस्त किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमरकंटक में जल स्रोतों के संरक्षण और प्रकृति को बचाने का आह्वान किया। रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने पर जोर दिया और प्रदेश में राशन वितरण को हाईटेक बनाने के लिए अब फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।